कमरे में वही लाल धीमी रोशनी थी, अब थोड़ी और स्थिर, जैसे सब कुछ थम कर देखने लगा हो। श्यामली बिस्तर पर लेटी लेटी अचानक उठकर बैठ गई। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन आंखों में एक अलग सा ठहराव आ गया था, जैसे वो किसी फैसले तक पहुंच चुकी हो। विश्वनाथ भी उसके सामने बिस्तर के किनारे बैठ गया। दोनों के बीच अब दूरी नहीं थी, बस एक चुप्पी थी जो पहले से ज्यादा बोल रही थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही श्यामली ने नजरें झुका ली। उसकी उंगलियां ब्लाउज के पहले बटन तक पहुंची और एक पल को रुक गईं। आप देख रहे हैं, उसने बहुत हल्की आवाज में कहा बिना नजर उठाए। विश्वनाथ ने सिर हिलाया। देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। श्यामली ने धीमे से पहला बटन खोला। कोई जल्दबाजी नहीं, जैसे हर हरकत को खुद भी महसूस करना चाहती हो। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं, लेकिन रुक नहीं रही थीं। दूसरा बटन खोलते हुए उसने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जिसमें झिझक भी थी और हिम्मत भी। विश्वनाथ बस बैठा रहा। उसने आगे बढ़कर कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में वही ठहराव था, लेकिन अब उसमें इज्जत और चाहत दोनों साथ साथ थे। अगर किसी भी पल तुम्हें लगे, उसने बहुत शांत आवाज में कहा, तो बस कह देना। श्यामली ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। अगर मुझे ना लगता, उसने साफ कहा, तो मैं यहां बैठे ही नहीं होती। तीसरा बटन खुला, फिर चौथा। अब उसकी चाल और धीमी हो गई थी, जैसे वो खुद भी इस पल को खींच लेना चाहती हो। लाल रोशनी में उसके चेहरे की लकीरें और गहरी लग रही थीं, गंभीर लेकिन सच्ची। उसने हाथ रोक लिए और उंगलियां आपस में फंसा ली। अजीत है, वो बोली, जिस्म से ज्यादा दिल खुल रहा है। विश्वनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और वही सबसे मुश्किल होता है। वो थोड़ा आगे झुका, अब भी दूरी रखते हुए। मैं तुम्हें छुए बिना भी यहां रह सकता हूं, उसने कहा, क्योंकि अभी तुम्हारा यूं बैठना ही काफी है। श्यामली ने आंखें बंद की, जैसे उस बात को अपने भीतर उतार रही हो। फिर उसने खुद ही ब्लाउज के खुले बटन पर हाथ रखा और उन्हें और ढीला होने दिया। कोई प्रदर्शन नहीं, बस भरोसा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वो सन्नाटा भारी नहीं था। वो सन्नाटा दो लोगों के बीच बनी उस समझ का था, जहां हर अगला कदम जल्द नहीं सही होना जरूरी था। लाल रोशनी में दोनों आमने सामने बैठे थे। रात अब भी जाग रही थी और कहानी अब और गहरी होने को तैयार थी। कमरे में लाल रोशनी अब भी वैसी ही थी, न ज्यादा न कम। श्यामली कुछ पल चुप बैठी रही, फिर उसने अपनी कमर की ओर हाथ बढ़ाया। पेटीकोट का नाड़ा उसने पहले कभी इतने होश के साथ नहीं खोला था। उंगलियां जैसे जानती थीं कि क्या करना है, लेकिन मन हर हरकत पर ठहर कर सोच लेना चाहता था। उसने नाड़े की गांठ को पकड़कर ढीला करने की कोशिश की, हल्का सा खिंचाव दिया, फिर रुकी। गांठ थोड़ी टाइट थी, या शायद उसके हाथों में अभी भी वही हल्की घबराहट थी जो पूरी तरह गई नहीं थी। उसने फिर कोशिश की, लेकिन नाड़ा वहीं अटका रहा। श्यामली ने सिर उठाकर विश्वनाथ की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बस एक सवाल बिना बोले। थोड़ी अटक गई है, उसने धीरे से कहा। विश्वनाथ ने एक पल सोचा, फिर बहुत साधारण ढंग से आगे खिसकाया। ना कोई तेज हरकत, ना अचानक स्पर्श। अगर तुम चाहो, उसने शांत स्वर में कहा, तो मैं मदद कर सकता हूं। श्यामली ने हल्का सा सिर हिलाया। वो इशारा छोटा था, लेकिन उसमें पूरा भरोसा था। विश्वनाथ ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसकी उंगलियां नाड़े तक पहुंची, लेकिन उसने पहले उसे देखा, जैसे आखिरी बार खुद को याद दिला रहा हो कि ये पल कितना नाजुक है। फिर बहुत धीरे से उसने गांठ को महसूस किया। सच में थोड़ी टाइट थी। ऐसे बन गई है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे खुलना नहीं चाहती। श्यामली के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। या शायद इंतजार कर रही है, उसने जवाब दिया। विश्वनाथ ने उंगलियों का दबाव थोड़ा बदला, नाड़े को जरा ढीला किया, फिर दूसरी ओर से खींचा। उसकी हर हरकत में सावधानी थी, जैसे वो गांठ से ज्यादा उस भरोसे को संभाल रहा हो जो श्यामली ने उसे दिया था। कुछ सेकंड लगे, फिर अचानक गांठ ने जैसे हार मान ली, नाड़ा ढीला पड़ गया। विश्वनाथ ने तुरंत हाथ रोक लिए। उसने नाड़े को आगे नहीं खींचा, बस उतना ही किया जितनी मदद मांगी गई थी। हो गया, उसने कहा। श्यामली ने गहरी सांस ली। न जाने क्यों उस छोटी सी मदद में उसे ज्यादा सुकून मिला। उसने खुद नाड़े को थोड़ा और ढीला किया और पेटीकोट को संभालते हुए एक तरफ रखा। कोई जल्दबाजी नहीं थी, हर चीज अपनी जगह, अपने वक्त पर। दोनों फिर आमने सामने बैठ गए।
अब हवा में एक अलग सा ठहराव था, और भी गहरा और भी साफ। श्यामली ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपने जैसे मदद की वही मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। विश्वनाथ ने बस इतना कहा, क्योंकि हर कदम तुम्हारे साथ चलना जरूरी है। लाल रोशनी में दोनों कुछ पल चुप रहे। रात अब भी जाग रही थी और उनके बीच की समझ अब और मजबूत हो चुकी थी। कमरे में अब जो सन्नाटा था वो चुप नहीं था, वो सांस ले रहा था। श्यामली कुछ पल बैठी रही, फिर अचानक आगे झुकाई। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी, बस एक साफ सी बेचैनी थी जो छुपाई नहीं छुप रही थी। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर विश्वनाथ की बांह थाम ली। उंगलियों में अब झिझक नहीं थी, सिर्फ पकड़ थी। आप बहुत ज्यादा शांत हैं, उसने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, और ये शांति मुझे और बेचैन कर रही है। विश्वनाथ ने उसकी आंखों में देखा, उसकी सांस भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। शांत दिखना और शांत होना दो अलग बातें हैं, उसने जवाब दिया। मेरे अंदर भी वही उथल पुथल है जो तुम्हारे अंदर है। श्यामली ने उसकी बांह खींच ली, एक झटके में नहीं, बस इतना कि वो और करीब आ जाए। अब उनके बीच इतनी ही दूरी थी कि दोनों की सांसें टकराने लगीं। तो फिर दूर क्यों है, उसने पूछा, जब दिल इतनी जोर से खींच रहा है तो शरीर क्यों पीछे हटे। विश्वनाथ की आंखें गहरी हो गईं। क्योंकि मैं चाहता हूं, उसने कहा, कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो तुम पूरी तरह तैयार हो। श्यामली के होठों पर हल्की सी लेकिन बेहद अर्थपूर्ण मुस्कान आई। उसने अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। मैं इसी पल के लिए तैयार हूं, उसने फुसफुसाकर कहा, और अगर आप अब भी नहीं समझ रहे तो मुझे आपको अपने करीब खींचना पड़ेगा। उसने सच में उसे अपनी ओर खींच लिया। अब कोई खाली जगह नहीं बची थी। उनकी सांसें तेज थीं, दिलों की धड़कन साफ महसूस हो रही थी। आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, श्यामली ने बहुत धीरे कहा, जैसे मुझे छुए बिना भी महसूस कर पा रहे हूं। विश्वनाथ ने होठों को उसके कान के पास लाकर कहा, क्योंकि इस वक्त तुम्हें महसूस करने के लिए छूना जरूरी नहीं, तुम खुद मेरे अंदर तक आ चुकी हो। श्यामली की सांस अटक सी गई। उसने उसके कंधों पर हाथ टिकाए, उंगलियां कस गईं। आप ऐसे शब्द मत कहिए, उसने हांफती आवाज में कहा, वरना मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। और मैं चाहता भी नहीं, विश्वनाथ ने जवाब दिया, कि तुम संभलो। वो पल धर रुका, फिर बहुत धीरे से उसका माथा चूमा। वो स्पर्श हल्का था लेकिन असर गहरा। श्यामली ने आंखें बंद कर ली। आप जानते हैं, आप हर पल मुझे और बेसब्र कर रहे हैं। और तुम, उसने कहा, हर पल मुझे ये भूलने पर मजबूर कर रही हो कि रुकना भी कोई चीज होती है। वो फिर और करीब आई, इस बार बिना किसी शब्द के। उसका सिर उसके कंधे पर टिक गया। कमरे में लाल रोशनी अब भी थी, लेकिन अब उसमें सिर्फ रंग नहीं था, उसमें आग थी। दो लोग एक दूसरे के इतने पास कि अलग होना अब मुमकिन नहीं लग रहा था। रात अब भी जाग रही थी और उनके दिल अब इंतजार नहीं करना चाहते थे।